मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 3 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम थोड़ी सी एक अलग ही मुद्दे पर बात करते हैं और इसका संबंध इस बात से है कि सच में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सुख है, आनंद है, शांति है, संतोष है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में ही है, किसी एक पर्टिकुलर पद में ही है, किसी एक पर्टिकुलर सफलता में ही है, किसी एक पर्टिकुलर उपलब्धि में ही है, या कि फिर यह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मैन टू मैन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कोई काहू में सुखी और कोई काहू में मगन? इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और सच पूछे तो मुझे यह विषय सूझा तब जब मैंने यह खबर पढ़ी जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल के डेली ऑडियो लेक्चर में की भी थी और आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि अरविंद पनगड़िया जी ने, जो हमारे नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अब अपने पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि अभी उनके 5 महीने लगभग बाकी हैं। उनका 3 साल का टर्म था और वो जनवरी तक इस पद पर रह सकते थे। और किस लिए छोड़ा, किस लिए है? इसलिए कि अब वो अपने एकेडमिक कैरियर में जाना चाहते हैं। अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, वहां वे लौटना चाहते हैं और वहां जाकर के जो भी पढ़ने लिखने रिसर्च का काम होगा वो अब करना चाहते हैं। अब आप देखिए मित्रों कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। एक तरफ उनके पास इतना बड़ा पद है, मतलब भारत सरकार के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें से एक पद नीति आयोग के उपाध्यक्ष का है। इसके तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टू पीएम जो है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष ही होते हैं। नेक्स्ट टू पीएम मतलब नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट जो होते हैं वो उपाध्यक्ष ही होते हैं और वही सब काम देखते करते हैं। प्रधानमंत्री से उनका सलाह मशविरा चलता रहता है और लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होती रहती है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के निकट नहीं रहना चाहेगा? सामान्य तरीके से सोचिए, है ना, अदरवाइज तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता। सामान्य तौर पर हम ना हम एक जनरल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव साइकोलॉजी की बात नहीं। मैं ये जो प्रश्न जो मैंने किया उसको लेकर, हर कोई चाहेगा, इतना बड़ा पद है, अच्छी खासी सैलरी है, सारी सुविधाएं हैं, प्रतिष्ठा है और सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए कुछ करने का अवसर भी है। क्योंकि देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन में एंटर करते हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स के माध्यम से एंटर कर रहे हों, चाहे हम सिविल सर्विसेज के माध्यम से एंटर कर रहे हों, मन में चाहे जो कुछ भी हो, बताते तो यही है दोस्तों कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, हर कोई यही कहता है, राइट? तो वो मौका भी है क्योंकि नीति आयोग तो बहुत से रिकमेंडेशन देता है और सरकार उन पर विचार करती है और उन्हें लागू करती है और उससे देश का भला हो सकता है। ये सारी चीजें उनके पास थी। चलिए वो नेक्स्ट टर्म नहीं लेते, 5 महीने पूरा कर लेते, लेकिन चलिए उसका तो एक रीजन रहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब हम आपकी छुट्टी नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने लौटने का फैसला किया। 5 महीने के बाद देखिए, अगर वो यहां रहते और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सर्विस छोड़ देते तो यहां पता नहीं और क्या क्या उनको जीवन में मिलता। हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, आफ्टर ऑल एक पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फिर वित्त सचिव रहे, फिर वित्त मंत्री रहे और फिर सोचिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री बने, इतने पद उन्होंने संभाले, तो संभावना तो ऐसी जगहों पर रह के और ज्यादा बनती है। आप पीएम के नजदीक हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, आपके कार्य की प्रशंसा हो रही है, तो आपको जीवन में और बड़ी चीज कुछ भी मिल सकती थी। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो यह बात होगी, क्योंकि जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो बात उनके दिमाग में नहीं आई होगी, जरूर आई होगी। लेकिन उन्होंने अगर वापस जाने का फैसला किया तो क्यों किया? वो सिर्फ इसलिए ही किया होगा ना कि नहीं, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी चीज मिल जाए, लेकिन मुझे जो संतोष मिलेगा, मुझे जो आनंद मिलेगा, मुझे जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो वही मिलेगी, तो मैं अपने उसी जगह पर लौटना चाहता हूं। उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अरविंद पनगड़िया जी ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है, इनसे पहले और भी बहुत से लोगों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो तो आईसीएस ही हो गए थे, इंडियन सिविल सर्विस। उस समय अंग्रेजों के जमाने में बन जाना कितनी बड़ी बात होती थी, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ छाड़ करके चले आए। आप दूसरे फील्ड में देखिए, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, उनको तो बकायदे ऑफर हुआ था कि आप राष्ट्रपति पद संभाल लीजिए, मेरी समझ से शायद इसराइल के राष्ट्रपति बनने की बात आई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यहीं ठीक ठाक हूं। गांधी जी तो बैरिस्टर ही थे और वकालत के लिए ही वो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, लेकिन वहां उन्होंने एक घटना घटी और जब वहां की स्थितियों को देखा तो फिर उन्होंने एक तरीके से वहां आंदोलन ही छेड़ने का फैसला किया और इस अपने ज्ञान का इस्तेमाल वो आंदोलन के लिए करने लगे और वहां से उनकी पूरी लाइन चेंज हो गई। आज हम सब राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें याद करते हैं। मित्रों, ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं। दरअसल ये सब घटनाएं क्या बताती हैं, क्या कहती हैं? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि जो आनंद है वो पॉलिटिक्स में ही है, मंत्री बनने में है। सवाल इसका भी नहीं है कि बहुत बड़े सरकारी अधिकारी बनने में है, या इसका भी नहीं है कि एकेडमिक में ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एकेडमिक को छोड़ करके और पॉलिटिक्स में आए हैं। सीधे पॉलिटिक्स में तो हम ना बात करें, जैसे राधा कृष्णन जी को देखिए, हालांकि वो अंत तक अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे, लेकिन वो एकेडमिक पर्सन थे, फिर वो हमारे एम्बेसडर भी रहे, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि सच पूछे तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने जो मूलभूत जरूरत है या जो इच्छा है, कह लीजिए, जरूरत तो नहीं कहना चाहिए, बहुत छोटा शब्द है, उसको पहचाने। जब हम उसको पहचान लेते हैं तब हम अपने लिए सही फैसला कर पाते हैं, अदरवाइज हम फैसलों के मामले में एक तरीके से यूं कह लीजिए कि लुढ़कते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और इसका नतीजा क्या होता है? मुझे लुढ़काव से भी उतनी शिकायत नहीं है, उसका नतीजा यह होता है कि हम ना इधर के रह पाते ना उधर के रह पाते, यानी कि हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन कुछ पा भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि लुढ़कने की प्रोसेस में, कभी इधर कभी उधर भटकने की प्रक्रिया में हम एक के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत लग कर काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसका नतीजा यह होता है। देखिए, अगर बड़ी चीज है तो बड़ी चीज पाने के लिए तो लगना पड़ता है, और लगने के लिए बहुत जरूरी है कि जिसे कहते हैं कि आपको उसे बेइंतहा प्यार करना पड़ेगा। बेइंतहा का मतलब है कि जिसकी कोई थाह नहीं है, आप बहुत ज्यादा उसे प्यार कर रहे हैं, और जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे, चाहे आपका अपना उद्देश्य है या आपका अपना काम ही है, तो आप सोच करके देखिए कि उसके लिए कैसे बेचैनी हो जाती है मन के अंदर, कितनी जबरदस्त बेचैनी हो जाती है। मां को देखिए कि जब उनका बेटा रो रहा होगा, भूख से रो रहा होगा, तो चाहे गरीब से गरीब मां क्यों ना हो, कैसे बेचैन हो जाती है, वो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो चाहेगी कि उसके बेटे का पेट भर जाए, उसकी बेटी का पेट भर जाए, संतान भूखी न रहे, और उसके लिए वो कुछ भी करेगी, कितनी भी मेहनत करेगी। क्यों? इसलिए नहीं कि वह उसका बेटा बेटी है, इसलिए क्योंकि वह उसे बेइंतहा प्यार करती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहां मैं एक बहुत ही खतरनाक जो मनोविज्ञान होता है, आप लोगों का ध्यान उस ओर भी थोड़ा सा दिलाना चाहूंगा। वो खतरनाक मनोविज्ञान यह है, अंगूर खट्टे हैं, यह बहुत ही खतरनाक मनोविज्ञान है। इसकी कहानी आप जानते हैं कि एक लोमड़ी थी, उसने देखा कि अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, उसकी इच्छा हुई, उनको देख के उसके मुंह में पानी आ गया, उसको लगा कि यार ये अंगूर मुझे खाने चाहिए, उसने छलांग लगाई, लेकिन अंगूर के गुच्छे ऊंचे थे, वो उन्हें लपक नहीं पाई, तो एक आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था कि लोमड़ी कोशिश तो कर रही है लेकिन वह उसे हासिल नहीं कर पा रही है। तब लोमड़ी को बड़ी शर्म सी आई, तो वो जाकर के उस आदमी से कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मैं कर लेती, लेकिन मुझे मालूम है कि ये अंगूर खट्टे हैं, खट्टे अंगूर को तोड़ भी लेती तो मैं क्या करती। यानी कि हम जब असफल हो जाते हैं तो उसके पक्ष में एक तर्क देते हैं, और तर्क ये देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मित्रों, असफल होना तो जिंदगी का सिद्धांत है, जिंदगी की प्रक्रिया है, और जिंदगी ही है, हम असफल तो होंगे ही। बिना असफलता के तो सफलता कभी मिलती ही नहीं है, यह हमें सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां जो थोड़ी सी जो बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अच्छा होता कि वो लोमड़ी उस अंगूर को चख कर देखती, उस आदमी से रिक्वेस्ट कर लेती कि भैया तू थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, दो चार फल जरा मुझे खिला दे, मैं चख कर देख लेती हूं, और चखने के बाद वो कह देती कि नहीं अंगूर खट्टे हैं, तब सही मायने में विश्वसनीय होती। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये कहने से कि तू मुझे तोड़ कर दे दे, मैं तोड़ नहीं पा रही हूं, तो उसके अहम को ठेस पहुंचती, उसके ईगो को ठेस पहुंचती कि आदमी क्या समझेगा मुझे कि ये तो तोड़ नहीं पाई, ये तो कमजोर है, तो पहली बात तो है कि मैं उससे नहीं कहूंगी, तो मैं झूठ बोल देती हूं कि ये अंगूर खट्टे हैं, और वो आदमी तो मुस्कुराएगा क्योंकि वो जानता है कि अंगूर के बाग उसी के थे और अंगूर बहुत मीठे हैं, हर कोई कहता है मीठे हैं, तो मेरे कह देने से वो खट्टे नहीं हो जाएंगे। हां, अगर मैं चख लूं और फिर कहूं खट्टे हैं तब बात अलग है। तो आप देखिए कि ये जो लोग हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिए हैं, अपने उन चीजों को छोड़ा है, इन लोगों ने क्या किया है, अंगूर खट्टे हैं नहीं कहा, उन्होंने उसके लिए कोशिश की, उसे हासिल किया, और इसके बाद फिर कहा कि नहीं नहीं ये कुछ जम नहीं रहा है, हम अपने पहले वाले में ही जाते हैं, या पहले वाले में नहीं तो हम उसमें जाते हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं, जिसमें हम रमना चाहते हैं, जिसमें हमारी आत्मा एक तरह से एकाकार हो जाती है, हमारे मन को संतोष मिलता है, शांति प्राप्त होती है, हम उसमें जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें फिर मजा आता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है, अपने काम के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति अगर हम आनंद के भाव से जुड़ जाते हैं, मजा आने के भाव से जुड़ जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, वह आपको बोझ नहीं लगेगा, और आप फिर इस बोझ को, सो कॉल्ड कह लीजिए बोझ को, अपने कंधों पर लादे हुए बड़े आराम से जिंदगी का सुहाना सफर पूरा कर लेंगे। इनफैक्ट यूं कह लीजिए कि हमारा सफर ही इससे सुहाना बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब मैं आप सबकी अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।